ओम शांति। क्या सुना गीत? गीत क्या सुना? तोड़ के बंधन अंधकार के, शिव को याद करे। बंधन जो है वो अंधकार के है। विदेश में एक देश हुआ है रोम। उस रोम में एक लुहार था। वो लुहार इतना अच्छा कारीगर था कि देखते ही देखते बहुत प्रसिद्ध हो गया। इतना प्रसिद्ध हुआ और प्रसिद्धि के साथ साथ धनवान भी होते गया। उसकी बनाई हुई वस्तुएं दूर दूर तक जाने लगी, बिकने लगी। साधारण सा लुहार एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। लेकिन अचानक एक दिन रोम पर आक्रमण हुआ और रोम पराभूत हुआ। उस देश के जो भी बड़े बड़े लोग थे धनवान, उनको पकड़ लिया गया और जंजीरों में बांध दिया गया। वो जो 100 लोग थे जो धनवान थे, उनमें एक ये लुहार भी था कि जिसे पकड़ लिया गया और जंजीरों में बांध दिया गया। बाकी जो सारे थे जिनको जंजीरों में बांधा था, वो बड़े ही दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। परंतु ये जो लुहार था बड़ा ही निश्चिंत था और बड़ा ही शांत था। उसे जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। जितने लोगों को पकड़ा गया था, रस्सियों में जंजीरों में बांध दिया गया था, उन सभी को, किसी को गुफाओं में, किसी को कंदराओं में, किसी को खाई में फिकवा दिया गया। हमेशा के लिए जंजीरों में बांधकर फेंक दिया गया ताकि सभी मर जाए। फिर भी ये जो लुहार था बहुत ही शांत था और बहुत ही निश्चिंत था। हाथों में और पैरों में और शरीरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। इस लुहार की भी बारी आई और उसको भी फेंक दिया गया। जब वो उस खाई में जाकर गिरा और उसने वो जंजीरों को देखा, अब तक वो निश्चिंत था। क्यों निश्चिंत होगा? क्योंकि उसे विश्वास था कि चाहे कितनी भी मजबूत जंजीर हो, मैं उसे, उसकी कड़ी को तोड़ ही दूंगा। हर जंजीर की कोई ना कोई एक कड़ी होती है जहां वो बंधी होती है। तो चाहे कैसी भी जंजीर हो, और ये लोग तो मुझे छोड़कर जाएंगे ही, कहीं तो फेंक कर। इसके लिए वो निश्चिंत था, शांत था। बाकी सारे दुखी थे। परंतु जब इस लुहार को खाई में फेंक दिया गया और उसने उन जंजीरों को देखा, बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। अब तक जो शांत था, अब तक उसका चित्त बिल्कुल भी व्याकुल नहीं था, परंतु अब जब फेंक दिया गया और उसने पहली बार उन जंजीरों को देखा, दुखी हो गया। सभी से प्रश्न है, वो दुखी क्यों हुआ? क्यों दुखी हो गया? दो कारणों से वो दुखी हुआ। एक तो सारे जीवन भर जंजीरों को बनाता रहा और आज उसके जीवन का जो अंत है वो इस दुखद रीति से हो रहा है। परंतु उससे भी अधिक दुख का कारण कौन सा था? वो जब भी कोई जंजीर बनाता था तो अपना दस्तखत करता था। जब उसने देखा जिस जंजीर में वो बंधा है उस पर उसी का दस्तखत है, ये जो बंधन, ये तो जंजीर उसने जो बनाई थी, किसकी बनाई थी? वो स्वयं की ही बनाई हुई थी। और वो प्रसिद्ध ही इसलिए हुआ था कि जो भी काम वो करता था, ऐसा कार्य वो करता था कि जिसका कोई तोड़ नहीं, ऐसी जंजीर वो बनाता था कि जो कोई भी तोड़ ना सके। और आज वो देखता है कि जिस बंधनों में और जिस जंजीर में, जिस चेन में वो बंधा है, वो उसी के हाथों की बनाई हुई है। उसे तो वो खुद भी नहीं तोड़ सकता। जो जंजीरें बाहर से आती है उन्हों को तोड़ना आसान है, परंतु मुश्किल कौन सी जंजीरों को तोड़ना है? जो जंजीरें हमने स्वयं निर्मित की है, जिनके रचयिता हम स्वयं हैं, ऐसे बंधनों में हम फंसे हुए हैं। जन्म जन्म जंजीरों में फंसे थे, ब्राह्मण बन गए, भगवान का परिचय मिला, फिर भी नई नई जंजीरें लोहे की तोड़ दी, परंतु सोने की जंजीरों को हमने अभी भी श्रृंगार कर रखा है, तोड़ने को मन नहीं करता। कौन तोड़ेगा सोने की जंजीरों को? और क्योंकि वो निर्माण किसने की है? हमने स्वयं की है। उसी लोहार की तरह, वो कथा सत्य है या काल्पनिक उसको छोड़ दो, परंतु जिन जंजीरों में हम फंसे हैं वो सभी की सभी जंजीरें किसने निर्मित की है? हमने स्वयं। सबसे पहले तो उनकी कड़ी को ढूंढना होगा कि वो जंजीरें कब और कहां और कैसे निर्मित हुई, उसके बाद ही उन्हें तोड़ने का उपाय हम प्राप्त कर सकते हैं। मुरली में, वरदान में और टीचर्स से मुलाकात में बाबा ने निर्बंधन होने की बात कही है। जैसे ब्रह्मा बाप, जैसे शिव बाबा स्वयं कैसा है? निर्बंधन। इस तन में आता है और चला जाता है, इस तन का भी उसे बंधन नहीं है। वरदान में भी बाबा ने कहा है, क्या कहा है, किसको याद है? दुख के बंधन, तन के दुख के बंधन, इच्छाओं के बंधन है, इच्छाओं के भी दुख है, दुखी स्वभाव संस्कार, संबंध के दुख, ये सारे दुखों की लिस्ट गिनाई है बाबा ने। परमात्मा प्राप्ति न होने के दुख, पुकारने और चिल्लाने के दुख, संसार की सारी आत्मा इन दुखों के बंधनों में बंधी हुई है। तुम्हें रहम दिल बन, उन्हें क्या करना है? लिबरेट। ऐसे लिबरेट करने वाले तुम सब कौन हो? मास्टर लिबरेटर। तो बाबा ने आज हमें सुमान दिया है टीचर्स से मुलाकात। हम सभी कौन हैं? टीचर्स से मुलाकात सभी कौन हैं? अवतार। कौन हैं हम सभी? अवतार। जैसे बाप उस तन में आता है परंतु निर्बंधन है, वैसे हमें भी निर्बंधन रहना है। ये शरीर को जैसे चलाना चाहे चला सके, संस्कारों को जैसे बनाना चाहे बना सको, स्वभाव को जैसे बनाना चाहो बना सको। ये जो तुम कहते हो, बोल क्या है वो जिसे बाबा ने कहा ये कमजोरी के बोल है? कौन से बोल? शरीर का हिसाब किताब है, जन्म जन्म के संस्कार है, ये कहना भी क्या है, कमजोरी। ये कहना भी क्या है कि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। उसके लिए बाबा ने क्या उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है बाबा ने। जब बाबा को बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसके लिए हमें बंधन है, बाबा का क्या उत्तर है इसके लिए, मुरली सुनी है सभी ने, जिस जिसने सुनी है हाथ ऊपर करो, फिर आवाज इतनी मध्यम क्यों, पढ़ी जिसने है वो हाथ खड़े करो, जिसने पढ़ी है एक भी नहीं, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया इस प्रश्न के लिए प्रभाकर भाई, कि बच्चे कहते हैं बाबा हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बाबा का क्या उत्तर है, कौन बताएगा, बाबा ने कहा कहते क्या हो तुम, तन मन धन किसका, सब कुछ अर्पण। तो जब तन ही हमारा नहीं है तो ये बंधन कहां से आया, फिर कहते क्या है हम सभी, तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसे तो नहीं है कि दो को अर्पण किया और एक को नहीं, इसके लिए निर्बंधन, ये मर्जीवा जन्म है। तो बाबा ने आज ये जो कहा, सभी अभी अलर्ट होके बैठ जाइए, इसी पर हम योग का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए बाबा ने हमेशा जो कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाओ, आज बाबा ने कहा ऊपर से नीचे आओ, अवतार अर्थात ऊपर से जो नीचे आता है, तो ड्रिल कौन सी करनी है, मैं परमधाम निवासी हूं और फिर वहां से नीचे आता हूं, अवतार संसार में एक अवतार आता है तो क्रांति हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, हलचल हो जाती है, तुम एक एक अवतार हो, कौन हो, एक एक अवतार हो, वो है आत्मिक शक्ति वाले और तुम परमात्म शक्ति स्वरूप अवतार हो। तो सभी सचेत होकर बैठ जाए, टीचर से जो मुलाकात बाबा ने की है उसी पर हम योग का अभ्यास करेंगे। सुनहरे लाल प्रकाश में मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूं, परमधाम में हूं, चारों ओर गहन शांति है, संपूर्ण शांति, चमकता हुआ सितारा है, मैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं, शांति धाम की शांति, मुझ आत्मा में समा रही है, निर्वाण में हूं, निस्तब्धता, एक बेआवाज सी चुप्पी, स्वयं को देख रहा हूं अति तेजो में, तेजस्वी आत्मा हूं, निराकारी दुनिया में चहुओर निराकारी आत्माएं हैं, आत्माओं के देश में मैं अति तेजस्वी आत्मा हूं। परम धाम से निकल अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस तन में अवतरित हो रही हूं, भ्रुकुटी के मध्य में। तन के भव्य भाल पर एक चैतन्य ज्योति हूं मैं, अवतार हूं। मेरा अवतरण इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए हुआ है। जैसे बाप निर्बंधन है, वैसे ही मैं आत्मा संपूर्ण निर्बंधन हूं। देह के बंधन से भी मुक्त हूं, देह के स्वभाव से मुक्त हूं, देह के संस्कार से भी मुक्त हूं। मेरा तो यह मर्जीवा जन्म है, पुराने जन्म के सारे हिसाब समाप्त हो गए। उधर का रजिस्टर समाप्त हो गया है। मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण निर्बंधन अवस्था में महसूस कर रही हूं। विश्व परिवर्तन के इस कार्य में मैं निमित्त हूं। करण करावनहार एक ही बाप है, संपूर्ण बोझ मुक्त हूं। निर्भार हूं, इस संसार में मेरा अवतरण इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए हुआ है। इसी समान में स्थित संपूर्ण चेतन अवस्था में मैं इस देह में स्थित हूं। ओम शांति। देह में रहते हुए भी देह के बंधनों से निर्बंधन स्थिति, इस स्थिति का बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से हम सभी को अभ्यास करना है। तो आज की मुरली पर सीधा चलते हैं। आज बाबा क्या कह रहे हैं मुरली पर हमें? रूह है गुलाब। हम सभी कौन हैं? रूहानी गुलाब या फिर रूह है गुलाब। ये मुरली कहां चली है? इसी मेडिटेशन हॉल में। मुरली की तारीख अप्रैल मास में 1981 में चली है। तो उसी कालखंड में स्मृति से फिर से पहुंच जाओ। अव्यक्त बाप दादा आंखों के सामने है। मुरली चल रही है किस पर? रूहे गुलाब पर। कुछ भाई बहने कहां बैठे हुए हैं? नीचे हिस्ट्री हॉल में। बाबा कह रहे हैं चाहे नीचे बैठो या ऊपर बैठो, बाबा के लिए सभी कौन है? VIP। जो दूर बैठे हैं चाहे कहीं भी बैठे हो, बाबा उन्हें कहां देखते हैं? अपने नजरों के सामने देखते हैं। बाप दादा बच्चों के संकल्पों को सुनते हैं। क्या करते हैं बाबा? जो जो मन में संकल्प चल रहे हैं उन सभी संकल्पों को बाप दादा सुनते हैं, चाहे कहीं पर भी बैठे हो। जो दूर है उन्हें तो बाबा और ही समीप देखते हैं। तो ये संगठन आज बाबा ने किसका संगठन देखा? सभी रूहे गुलाब है। और आज के दिन विशेष हरेक रूहे गुलाब की क्या निकल रही है? रूहानी खुशबू। कैसी है ये रूहानी खुशबू? कहां तक पहुंच रही है? वतन तक पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है? चारों ओर पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है? बाप दादा तक पहुंच रही है। कैसी है ये खुशबू? अविनाशी है। कैसी है ये खुशबू? एक रस खुशबू है। और कौन सी खुशबू है ये? एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति में इस समय सभी नंबर वन है। इस समय किस समय? जबकि भगवान स्वयं सामने बैठा है उस समय कम से कम। बाकी का, बाकी के लिए बाबा नहीं कह रहे, उस समय के लिए कह रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, उसमें सभी कैसे हैं? नंबर वन है। ये जो रूहानी खुशबू है इसका आधार क्या है? मुरली सारी इस पर है। सभी कौन है? रूहे गुलाब। उनसे क्या निकल रही है? रूहानी खुशबू। अब ये रूहानी खुशबू है जो वतन तक पहुंच रही है, चारों ओर पहुंच रही है और बाप दादा तक पहुंच रही है और अविनाशी है और एक रस है। उसका आधार स्तंभ क्या है? छह बातें उसका आधार स्तंभ है। सबसे पहली बात रूहानी वृत्ति, दूसरी बात दृष्टि, तीसरी बात सेवा, रूहानी सेवा, चौथी बात भावना, पांचवी बात कामना और छठवीं बात कौन बताएगा? स्मृति। छह बातें किस चीज का आधार है? रूहानी खुशबू का। नीचे से चालू करते हैं। कौन सी स्मृति सदा कौन सी स्मृति रहनी चाहिए? आत्मिक स्मृति नहीं, वो तो वृत्ति में कहा है बाबा ने। स्मृति में निरंतर यह धुन रहे। कौन सी धुन रहे? कि जल्दी से जल्दी विश्व का परिवर्तन हो। ये क्या है? स्मृति है। ये स्मृति आधार है उस रूहानी खुशबू की। फिर है कामना। कौन सी कामना? जो दुखी है, जो अशांत है और जो कंगाल है, उन्हें क्या बनाने की कामना होनी चाहिए? सुखी, शांत और माला माल। ये है कामना। फिर है भावना। कैसी भावना होनी चाहिए हम सभी की, जो कि आधार है रूहानी खुशबू का? कौन सी भावना होनी चाहिए? कौन सी शुभ भावना होनी चाहिए? सभी बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाए, यह भावना। दूसरी भावना कौन सी? जो परवश आत्माएं हैं वो भी क्या हो जाए? परवश आत्माएं किस बात का अनुभव करो? बाप से प्राप्त हुई शक्तियों के सहयोग का अनुभव। यह है भावना। और भावना कौन सी? ब्राह्मणों के लिए क्या और अन्य आत्माओं के लिए क्या? ब्राह्मणों के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। कौन सा दान देना है उन्हें? बाबा द्वारा प्राप्त हुई, हमने जो अपने जीवन में गुणों को और शक्तियों को जो धारण किया है उसका दान देना है। और कौन सी भावना? और एक भावना है किसी की भी कमी को और कमजोरियों को न देखना। तो इतनी सारी भावनाएं बाबा ने कही है आज। कौन कौन सी? फिर से रिवाइज करो। पहली भावना, सभी आत्माएं वर्षे के अधिकारी बन जाए। ये भावना न हो कि ये ऐसा है, चाहे कैसा भी हो परंतु बाप समान, इसे मैं बनाऊं। यह भावना, चाहे कितनी भी परवश आत्मा हो, विकारों के अधीन आत्मा हो, परंतु हमारे मन में कौन सा भाव हो कि अपनी शक्तियों से जो गुण हमने धारण किए हैं जीवन में, उनसे उन आत्माओं को भी बाप समान बना दे, वो भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। चाहे विकार ग्रस्त है, पराधीन है, उसके बावजूद भी यह हमारी श्रेष्ठतम भावना हो संसार की हर आत्मा के लिए। ये नहीं कि ये ऐसा ही है, चाहे कैसा भी हो। कि कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, अच्छा नहीं, ऐसा बाप को कोई दिखता ही नहीं है, बाबा को ऐसा कोई दिखता ही नहीं है कि जो अच्छा नहीं है, सभी उसको अच्छे ही दिखते हैं। इसके लिए तो दूर दूर से उसने जाकर सबको चुना है। उसके बाद में है दृष्टि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? रूहानी दृष्टि। आज की मुरली में क्या कहा दृष्टि के लिए बाबा ने? हमारी दृष्टि में बाबा हो और बाप की दृष्टि में हम हैं। नैनों की दुनिया में रूहानी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, देवताओं की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, हमारी दृष्टि कैसे हो? देह को देखते हुए, देह की दुनिया को देखते हुए, देह के दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए, देह के दुनिया के व्यक्तियों को देखते हुए भी न देखे। ये है दृष्टि। ऐसी हमारी श्रेष्ठ दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो, रूहानी दृष्टि हो। हमारे नैनों की दुनिया में बाबा ने कहा रूहानी दुनिया, रैनों की दुनिया में फरिश्तों की दुनिया, नैनों की दुनिया में देवताओं की दुनिया हो। ये है दृष्टि। और सबसे पहला आधार जो बताया है आज की मुरली में रूहानी खुशबू का, वो है रूहानी वृत्ति। उसमें बाबा ने कई सारी बातें बताई है। सबसे पहले तो मैं रूह हूं। वृत्ति कौन सी हो? ये वृत्ति में आ जाए, रटने की बात नहीं है परंतु वृत्ति बन जाए। कौन सी वृत्ति? मैं रूह हूं, रूह से बोल रही हूं, रूह को देख रही हूं। सबसे पहला ये अभ्यास। इसमें दो अभ्यास समाये हुए हैं। पहला तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कि मैं रूह हूं, देखते हुए बोलते हुए। दूसरा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, जिसको भी देखू उसको रूह ही देखू। ये क्या है? रूहानी वृत्ति। वृत्ति में एक दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा है कि मैं रूह कहां हूं? सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूं। यह भी योग का एक अभ्यास है, चलते फिरते ऊपर सुप्रीम रूह और उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। तो यह है क्या? एक अभ्यास। यह है रूहानी वृत्ति। तीसरा और एक अभ्यास दिया है बाबा ने, मुझ रूह का एक भी संकल्प कैसे नहीं होगा? श्रीमत के विरुद्ध नहीं होगा। सारे ही संकल्प कैसे हो? श्रीमत अनुसार होगा, होंगे। ये भी अभ्यास एक बाबा ने यहां पर दिया हुआ है। और रूहानी वृत्ति में कौन सी पॉइंट्स है? कंबाइंड स्वरूप की पॉइंट भी यहां पर है कि मैं और वो कैसे है? कंबाइंड है। रूह सुप्रीम रूह के बिना रह नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती, और वो भी अलग नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट यहां पर है कंबाइंड स्वरूप की। और एक पॉइंट है रूहानी वृत्ति में, वो कौन सी? बाबा भी हमारे लिए हाजिर, हुजूर हाजिर है, इसके लिए हम भी क्या? जी हुजूर। ये सारी ही बातें मिलकर बनती है रूहानी वृत्ति। तो हम सभी कौन है? रूहे गुलाब है, जिनकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। ये खुशबू कैसी है? अविनाशी है। ये खुशबू कैसी है? एक रस है। ये खुशबू बाप दादा तक पहुंच रही है, और इस खुशबू का आधार है रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि और रूहानी सेवा। रूहानी सेवा का भी एक पॉइंट है, दिन रात सेवा में है, ये है रूहानी सेवा। चौथा रूहानी भावना, पांचवा रूहानी कामना, और छठवा स्मृति। स्मृति में केवल एक ही धुन है, कौन सी धुन? कि विश्व का परिवर्तन हो जाए, बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। जो गीत अभी हम सुन रहे हैं और हमको जो लगता है ये हमारे गीत है, हमारे अंदर भावना हो कि ये गीत एक दिन सारे विश्व की आत्माओं के हो जाए। जो अभी हम गाते हैं वारे मैं आत्मा, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 4, हम सभी कौन है? भाग्यशाली आत्माएं, महान भाग्यवान आत्माएं हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है गीत गाते रहो और क्या करते रहो? नाचते रहो, ताकि तुम्हारी खुशी का डांस देखकर दूसरे भी नाचते रहे। कौन सा गीत गाते रहो? वारे वारे में, ऐसे तो नहीं कहते हो ना वारे में, ये भी एक कहना है वारे में। वारे में एक एक तो है वारे में, दूसरा है वारे वाह बाबा वाह, और तीसरा है वाह ड्रामा वाह। परंतु अगर शरीर की मुद्राएं बदल दी तो वो वैसे भी हो सकता है। एक तो वारे में, दूसरा वारे बाबा, और तीसरा वारे ये ड्रामा, ऐसे तो नहीं कहते हो ना। बाबा ने कहा स्वयं भगवान को तुमने जान लिया, और क्या जानने का है? बीज तुम्हारे हाथ में आ गया है तो वृक्ष उसमें आ जाता है, समा जाता है। दिखाया है राजा, एक राजा था जिसने सुबह सुबह घोषणा कर दी अपने राज्य में, सुबह नहीं शाम को घोषणा की कि कल सुबह राजभवन के द्वार खोल दिए जाएंगे, और जो भी व्यक्ति आ जाएगा उसे, जो भी व्यक्ति जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो नगर के लोग हर एक बहुत सारी चीजें सोचता है, कोई सोचता है मैं राजा और रानी के जो जवाहरात है उनको सबसे पहले जाके हाथ लगा लूंगा, कोई सोचता है यहाँ की दुधारू गाय बहुत अच्छी गाय है यहाँ की, कोई सोचता है मैं गाय को हाथ लगा लूंगा, कोई सोचता है मैं राजभवन को हाथ लगा लूंगा, कोई सोचता है मैं हीरो को हाथ लगा लूंगा, ऐसे भिन्न 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 हर एक अपने रीति से, कोई सोचता है मैं घोड़ों को ही हाथ लगा लूंगा, इतने सारे राज प्रसाद के सारे घोड़े मेरे हो जाएंगे। और दूसरे दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और द्वार खुलते हैं राज प्रसाद के, सारे लोग यहां वहां भागते हैं, राजा अपने ही सीट पर बैठकर यह दृश्य देखता है और मन ही मन मुस्कुराते रहता है कि देखो लोग कैसे यहां वहां भाग रहे, कैसा यह अद्भुत सा दृश्य है। और हरेक इसी धुन में है कि मेरी जो मनपसंद वस्तु है उसे कोई दूसरा ना हाथ लगा ले, इसके लिए सबसे पहले भागकर मुझे उस वस्तु को हाथ लगाना है जो मुझे चाहिए। राजा यह सब दृश्य जब देखते रहता है तो छोटी सी एक बच्ची राजा की तरफ बढ़ती हुई आती हुई उन्हें राजा को दिखती है। राजा को लगता है शायद इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां क्या हो रहा है, शायद ये पूछने आ रही है मुझे कि ये क्या हो रहा है, ताकि ये भी वो चीज करे। परंतु वो आती है और सीधा राजा को हाथ लगा देती है। तो क्या हो गया? अब जब राजा ही उसका हो गया तो राजा की हर वस्तु उसकी हो गई। जब तुमने बीज को ही पकड़ लिया तो ये सारा ही वृक्ष तुम्हारा हो गया है। जब भगवान ही तुम्हें मिल गया, इस सृष्टि का रचता ही तुम्हें मिल गया, तो ये सारी सृष्टि तुम्हारे कदमों पर है में पड़ी हुई है। इसके लिए पहले उसको पालो, उसके अधिकार की सारी वस्तुएं तुम्हारी है। उसको छोड़कर अगर उसकी वस्तुओं के पीछे जाओगे तो ना तो वो मिलेगा ना ही उसकी वस्तुएं। कलयुग में सारी इच्छाएं पूर्ण हो असंभव है, अव्यक्तवाणी लास्ट इस सीजन की लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था ना, कलयुग के सारे साधन मिल जाए असंभव है। तो ना तो साधन मिलेंगे ना ही बाप मिलेगा। इसके लिए महान भाग्यशाली हो। क्यों महान भाग्यशाली हो? इस वरदानी भूमि पर आए हो, वरदानों से स्वयं की झोली भरने के लिए आए हो, इसके लिए महान भाग्यशाली हो। लकी हो तो लकी लवली भी हो, दो सम्मान बाबा ने पार्टियों को दिए है, लकी और लवली भी हो। अगर कोई हमें कहे कि इस संसार में सबसे महान कौन है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? माताएं, अगर कोई आकर पूछे कि आपसे कि इस संसार में सबसे महान कौन है, क्या कहेंगे? वो कहेंगे प्रमाण दो तो। आप कहेंगे हम सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, और वो कहेंगे इसका क्या प्रमाण है, हमें तो लग रहा है आप लोग पागल हो गए। तो क्या कहेंगे, पागल ही है? वो कहेंगे प्रमाण दो तो क्या कहेंगे कि इस संसार में हम ही सबसे महान है और हम ही सबसे श्रेष्ठ है, इस बात का क्या उत्तर है? विदेश में एक देश हुआ है यूरोप में जिसका नाम है फ्रांस। एक दिन सुबह सुबह फ्रांस का शहर है, उसमें राजधानी है पेरिस। उस पेरिस की राजधानी के विश्वविद्यालय में एक अध्यापक, एक प्रोफेसर सुबह सुबह क्लास में आता है और उनके सारे विद्यार्थियों को कहता है कि क्या तुम जानते हो इस संसार में सबसे महान व्यक्ति कौन है? विद्यार्थी कहते हम नहीं जानते। वो कहते हैं मैं हूं। तो सारे विद्यार्थी हंसने लगते हैं, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए कि आप कैसे कह सकते हो कि आप ही सबसे महान हो, इसका प्रमाण क्या है? वो कहता है देखो मैं अभी तुमको प्रमाण देता हूं, अभी ये बताओ कि सारे विश्व में सबसे महान देश कौन है। तो क्योंकि वो फ्रांस में बैठे हुए तो सारे विद्यार्थी क्या कहेंगे, वो कहते हैं फ्रांस। तो अभी दुनिया तो एक तरफ हो गई क्योंकि सारे विश्व में सबसे महान है फ्रांस। फिर वो अध्यापक पूछते हैं अब ये बताओ फ्रांस में सबसे महान देश शहर कौन सा है, राजधानी है पेरिस। तो सारे बच्चे कहते हैं पेरिस, और क्योंकि हम भी वहां महान है। अब ये बताओ कि इस पेरिस में सबसे महान स्थान कौन सा है, क्योंकि वो विश्वविद्यालय में बैठे वो विद्या का मंदिर है। तो अर्थात ही विद्या का मंदिर जो विश्वविद्यालय है वो वास्तव में शहर में सबसे महान स्थान है। तो वो पूछता है कि इस शहर में सबसे महान स्थान कौन है, तो विद्यार्थी कहते हैं कि निस्संदेह यही विश्वविद्यालय। फिर वो पूछता है अब ये बताओ इस विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विभाग कौन सा है। वो कहते हैं कि नेचुरली जहां हम बैठे हैं, क्योंकि ये क्लास चल रही है दर्शन शास्त्र की, फिलोसॉफी की, तो फिलोसॉफी की क्लास तो सबसे महान है। अब वो कहता है कि आपकी जो फिलोसॉफी की क्लास है उसका अध्यक्ष कौन है? वो कहते हैं आप ही हो। इसका मतलब सारे विश्व में मैं ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान है। इस सारे जगत में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। भारत में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? आबू। आबू के सबसे बड़े तीर्थ स्थान में सबसे बड़े विश्वविद्यालय कौन सा है? यह पांडव भवन। इस पांडव भवन में इस समय कौन बैठे हुए हैं? तो हम सब कौन हुए फिर, और सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? ज्ञान और योग। ये प्राचीन योग है। ये ज्ञान और योग से बढ़कर इस संसार में और कोई सब्जेक्ट है क्या? तो हम सभी कौन है? इस संसार की सर्व महान आत्माएं। इसी सम्मान के साथ स्थित हो जाओ कि मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूं, रूहे गुलाब हूं, रूहे रूहानी खुशबू फैलाने वाले हूं। भारत के चार राज्यों से आज बाबा ने मुलाकात की है। सबसे पहला महाराष्ट्र। क्या करना है उन्हें? महान बनना है और विश्व को महान बनाना है। यह स्मृति निरंतर रहनी है। कर्नाटक वालों को क्या करना है? क्योंकि नाटक में सभी कौन है? हीरो पार्टधारी। तो हीरो एक्टर बनना है और दूसरों को बनाना है। आंध्रा वालों को क्या करना है? अंधियारा मिटाने वाले ज्ञान सूर्य है, रोशनी को लाने वाले है। कौन सा अंधेरा? गरीबी का। कौन सी गरीबी? तन की, मन की और धन की। धन की गरीबी तो सब जानते हैं, मन की और तन की गरीबी कौन सी है? मन की गरीबी बीमारी, स्वास्थ्य का अभाव होना अर्थात गरीबी, और तीसरी बीमारी है, तीसरी गरीबी है मन की, वो सबसे सूक्ष्म है। मन में श्रेष्ठ विचार न होना, मन में ज्ञान और योग के प्रति आकर्षण न होना, मुरली से प्यार न होना, मुरली के चिंतन का अध्ययन में रुचि न होना, ये सब क्या है? मन की गरीबी। मन में ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ न होना, ये सब गरीबी है। इतने सारे खजाने बाबा ने दिए हैं, ऐसा ना हो कि वो खजाने ऐसे ही रह जाए और हमें पता ही नहीं इन खजानों के बारे में, तो ऐसी दुर्दशा हमारी ना हो जाए। जो ज्ञान रत्न बाबा ने हमें दिए हैं, वो सभी ही क्या करने हैं, हमें जीवन में धारण करने हैं। एक बार एक फकीर जिसे बहुत इच्छा थी वो धनवान बन जाए, एक भिखारी कितने ही साल, सारी उम्र अपनी भीख मांगते रहा, परंतु अंदर में इतनी कामनाएं थी पर कभी कोई कामना पूरी नहीं हुई। एक ही झोपड़ी में रहता था और वहीं पर झोपड़ी के ही बाहर 40 साल तक भीख मांग मांग के मर गया एक दिन। गांव वालों को किसी को वो पसंद न था। गांव वालों ने सोचा ये जहां मर गया और उसकी वो जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी को अब यहां से हटाओ, यहां पे बुरे प्रकंपन है, झोपड़ी को वहां से हटा देते हैं और सोचते हैं कि ये जो भूमि है इसको भी थोड़ा खोद कर बाहर फेंक दो। भूमि को खोदते हैं और नीचे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं निकलती है। ये जो फकीर था, ये जो भिखारी था, सारी उम्र इच्छा करते रहा धन की पर कभी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जहां वो रहता था उसी जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ था, उसे खबर ही नहीं थी। हमारी भी गति ऐसी ना हो जाए कि इतना ही ज्ञान रत्न हमारे पास आ रहे हैं, हमें मिल रहे, परंतु हमें पता ही नहीं ये रत्न है। वो आए और गए, सुबह गए मुरली सुना और बाद में पता ही नहीं क्या सुना, तो क्या हुआ? ये वैसी ही गति हुई हमारी। अगर बुद्धि में रत्न नहीं ठहर रहे हैं तो इन रत्नों को धारण करना है, तो ज्ञान सूर्य बनना है। फिर मद्रास, उसको क्या कहा बाबा ने, रास करने वाले। कौन सी रास? तीन प्रकार की रास, एक तो स्थूल रास, दूसरी खुशी की रास और तीसरी संस्कार मिलन की रास। मद अर्थात मगन रहना। अभी मद्रास नाम नहीं है, अभी चेन्नई नाम है। अगर चेन्नई नाम होता तो क्या कहते बाबा फिर चेन्नई के लिए? बेचैन आत्माओं को चैन देने वाले, बोला नहीं अभी तक, पर बोल सकते हैं। तो पार्टियों से मुलाकात, पहली पार्टी क्या कह रहे हैं बाबा, जो दिनचर्या है सुबह से लेकर तो रात तक वो कैसी व्यतीत करते हो, प्रश्न पूछ रहे बाबा। खाते कैसे हो, उठते कैसे हो, चलते कैसे, उसमें मुख्य श्रीमत कौन सी है, कौन सी श्रेष्ठ मत मिली है, हर चीज के लिए बाबा ने मत दिए, उठना कैसा है और सोना कैसा, एक एक हमारी जो एक्ट है उस पर एक एक मुरलियां चली है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मुरलियां चली है। सोना कैसे है उसके ऊपर एक लंबी मुरली चली है, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, हर चीज के लिए श्रीमत दी है। तो बाबा ने आज कहा कौन सी श्रेष्ठ मत मिली हुई है, सब कुछ करते हुए क्या याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं, क्या याद रहे, मैं ट्रस्टी हूं। अगर ये याद है तो हाई जंप, अगर ये याद है तो उड़ते रहेंगे, अगर ये याद है तो सारा बोझा किस पर पड़ जाता है, बाप पर पड़ जाता है। अगर ये याद नहीं तो याद रहेगा मैं गृहस्थी हूं, अगर गृहस्थी याद है तो सारा बोझा स्वयं पर पड़ जाता है, दुम लग जाती है, उड़ नहीं सकते, हाई जंप नहीं ले सकते, बोझिल अवस्था। परंतु ट्रस्टी का भाव है तो मेरा कुछ भी नहीं है। जिसी को बाबा ने टीचर से मुलाकात में कहा मैं निमित्त, चलाने वाला चला रहा है मैं चल रहा हूं, जो वापस रूहानी वृत्ति में कहा कि वह चला रहा है मैं चल रहा हूं, वो करण करावनहार मैं करणहार, करणहार याद रखते हुए भी किसकी स्मृति से, करावनहार की स्मृति से। निमित्त हूं पर किसने निमित्त बनाया उसको भी ना भूलो, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं। किस लिए? जैसे बैंक में लोग काम करते हैं ना, कितने पैसे हाथ में आते और जाते हैं, बैंक मैनेजर, पैसे आए, लाखों का बिजनेस, परंतु उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं, नहीं, उनको अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह महीने भर के बाद में मिलेगी। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु ये भाव नहीं है कि ये मेरा है। इस संसार में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये तो भाग्य है कि उसने हमें उसके कार्य में निमित्त बनाया है, कराने वाला फिर भी वही है। तो ट्रस्टी, पार्टी नंबर टू, उसमें क्या कहा बाबा ने, मूल आधार क्या है हर चीज का यहां पर, जो रोज की साकार मुरलियों में एक ही बात कितने समय से सुन रहे हैं सभी, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद कर। यहां पर बाबा ने उदाहरण दिए, जब दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो समान चाहिए, वैसे ही अगर आत्मा समझेंगे तो सहज होगा। तो ये एक बाबा ने यहां पर उदाहरण दिया है। तो ये सब, ये क्या है, आत्मा समझना और फिर याद करना, केवल आत्मा समझना नहीं, आत्मा समझना और फिर उसके बाद में याद करना। तो यहां पर ये बात बाबा ने कही है। उसके बाद तीसरा पार्टी, कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूं, हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे, हम सो, इसका नशा होना चाहिए। जैसे वो दुनिया वाले नशे में रहते हैं तो दुनिया भूल जाती है, तो तुम्हें भी दुनिया भूल जाएगी अगर तुम इस नशे में हो कि हम ही क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले। अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए भी ये भूलाना, भूलेना हल्का ना हो जाए। यहां बाबा ने फिर से एक उदाहरण दिया है, किसका, प्रेसिडेंट का उदाहरण दिया है ना, उसको कभी भूलता है क्या कि मैं प्रेसिडेंट हूं? सब कार्य करते हुए भी ये ना भूले, बाबा हर जगह सम्मान दे रहे हैं। सम्मान का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं, तो ये ज्ञान योग में भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ सकता। एक तरफ हमारा योग भी बढ़ता जाए तो दूसरी तरफ ज्ञान भी बढ़ता जाए, तभी इस योगी जीवन में मजा आएगा। इसके लिए बाबा ने कहा, नशा है, खुशी है, खुमारी है, माया पर नशा कम कर देती है। क्या करती है, जैसे डाकू, डाकू का उदाहरण दिया ना, पहले अलग करता है फिर वार करता है। यहां पर भी माया किनारे करती है फिर वार करती है। तो ज्ञान और योग से किनारा कर देना, बाप से किनारा कर देना, इस दैवी परिवार से किनारा कर देना, वो भी क्या होगा, नशा खत्म हो जाएगा वहां पर। तो ये था सेकंड पार्टी से, थर्ड पार्टी से मुलाकात, और चौथा तो सुना ही। तो बाबा ने सारी मुरली में क्या क्या बातें कही, एक तो रूहानी गुलाब। तो बाबा भी गुलाब का जो वृक्ष पुष्प जो होता है उसकी कलम होती है, गुलाब का इत्र, गुलाब के, गुलाब का जल, बहुवर्षीय ये पुष्प है। गुलाब में जो तीन बातें हैं, एक तो सुगंध, उसकी बनावट और उसका जो रंग, ये केवल इसी में है। इस हिसाब से इसका कोई फूल इसका तोड़ नहीं है। बाबा गुलाब की उपमा दे रहे हैं हमें, तो इतनी सुगंध हमसे आनी चाहिए। वो सुगंध उस वृत्ति से आएगी जिसमें आत्मिक स्वरूप हो, वो सुगंध उस दृष्टि से आएगी जिसमें देह देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, वो सुगंध उस दिन रात की सेवा से आएगी, वो सुगंध उन शुभ भावनाएं से और शुभ कामनाओं से आएगी, वो सुगंध उस धुन से आएगी कि निरंतर हमें यह चिंता हो। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे जगदीश भाई जी का उदाहरण, कि जब वो बीमार थे तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कह रहे थे कि बाबा को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर सका, कैसी तड़प होगी उस आत्मा में, कैसा ईश्वरीय स्नेह और वो प्यार होगा जो ऐसे भाव मन में प्रकट हो रहे हैं। ये है रूहानी गुलाब की निशानी, तो धुन बाबा को प्रत्यक्ष करने की। महान बनना, महान बनाना, हीरो एक्टर समझना, हीरो एक्टर बनाना, अंधकार को नष्ट करना, तीन प्रकार की रास करना, उसी रास में मगन रहना, स्वयं को ट्रस्टी समझना, स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करने का अभ्यास करना, और उसके बाद सो हम, ये जो मंत्र दिया है बाबा ने, इसका बार बार अभ्यास करना। मैं आत्मा ही, मैं ब्राह्मण ही, देवता बनने वाली हूँ, इस मुरली में और एक अभ्यास जो हमने हमसे छूट गया, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि उनको ये नशा रहता है कि मैं कर्मातीत हूं और देवता बचपन, देवता ही बचपन, देवत्व का अपना बचपन का स्वरूप याद करना और उसका अभ्यास करना, ये भी एक योग का अभ्यास है। तो देवता ही बचपन, उसको याद करना, और सबसे अंतिम महान भाग्यशाली आत्मा हूं। तो सारी ही मुरली का ये सार रहा। सभी इसमें से अपने अपने होमवर्क निकालना, उसमें से योग के प्रयोग ढूंढना और फिर तुरंत उसको करना। ऐसा जो करेंगे वही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई का हम स्वागत भी करते हैं और आभार भी करते हैं कि आज की अव्यक्तवाणी का बहुत ही सुंदर रीति से मंथन हम सभी को करवाया और साथ साथ उसका अभ्यास भी हमें करवाया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फिजिशियन हैं और 5.5 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। साथ ही अव्यक्तवाणी में अव्यक्तवाणी की आप बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं और हर संडे को ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में आप मुरली रिवाइज करते हैं, इसलिए पुनः सभी पट्टी वालों की ओर से डॉक्टर सचिन भाई का हम दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू।